ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुम्।
जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए प्रयोजनभूत सात तत्वों की अब यहाँ हम उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है कि मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए इन तत्वों को सही जानना अत्यंत आवश्यक है। उसमें हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व देखे। नौ पदार्थों को भी ऐसे कहते हैं, इसमें पुण्य और पाप को अलग से निकालते हैं, जो आश्रव और बंध में ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ ये जो सात तत्वों की बात हमने देखी, उसके डेफिनेशंस भी देखे थे और उस संबंधी विपरीत मान्यता कैसी कैसी होती है उसकी भी चर्चा की थी। अब यथार्थ श्रद्धान कैसा होना चाहिए, जिसको कहते गेय कौन से तत्व है, हेय कौन से है और उपादेय कौन से है, इसकी अपनी चर्चा चल रही है। ये मान्यता में हेय गेय उपादेय करना है और हम आचरण में करना चाहते हैं, क्योंकि परद्रव्यों को तो जीव जानता रहेगा, परद्रव्य इसमें है ही नहीं है। तो ये जो मानता है कि मुझे परद्रव्यों का त्याग करना है, तो ये कथन में आता है मैंने परद्रव्य का त्याग किया, पैसे का त्याग किया, परंतु सच देखा जाए तो उसके प्रति जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव का जीव त्याग करता है। तो जीव को इन अन्य द्रव्यों के प्रति जो ममत्व भाव है, उसमें उसकी जो एकत्व बुद्धि हो रही है, ये शरीर में एकत्व बुद्धि हो रही है, ये जो शरीर आदि अन्य सारे जो परद्रव्य है वो गेय तत्व है। कैसे जानना है उनको, ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना है, इसको कहते हैं गेय तत्व। उसमें इसने क्या माना है, या तो उपादेय माना क्योंकि मुझे परद्रव्यों का ग्रहण करना है, या हेय माना मुझे उनका त्याग करना है, परंतु वो उसको गेय नहीं माना। गेय भी मान लिया कहने के लिए, परंतु उसके जानने में लुब्ध हो गया, उसको गेय नहीं कहते हैं, क्योंकि केवल जान नहीं रहा, उसमें राग कर रहा है और उस मान रहा है कि मैं इसको जान रहा हूं, तो वो उसका गेय तत्व नहीं कहलाएगा। गेय तत्व का ही अर्थ है कि ऐसा जानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ना ही इनका कर्ता मैं हूं और ना ही इनका मैं भोगता हूं, बस ये परद्रव्य है, इतना जानना उसको कहेंगे गेय। हम कैसा जानते, हम अपने से विचार करेंगे, क्या हमने उनको गेय माना कि नहीं माना। अरिहंत सिद्ध भी अन्य जीव है, मेरी अपेक्षा हमने उनको क्या कहा था, अजीव तत्व, तो उनमें क्या माना हमने, उपादेय, कैसे उनका ही आश्रय करो, तो उनके भी वे भी गेय तत्व है। कैसे गेय है कि उन्होंने जिस मार्ग का अवलंबन किया है, जिसका उपदेश उन्होंने दिया है अरिहंतों ने, उस मार्ग पर चलकर, क्योंकि सात तत्वों का उपदेश तो भगवान ने दिया है, तो उसको सही मानना, ये तो भगवान की आज्ञा हुई ना, कि हमने भगवान का इंसल्ट किया। भगवान ही कहते हैं कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है और अपना आप तुम परमात्मा स्वरूप हो तुम, और अपने आत्मा का अनुभव करके सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। तो हम यदि भगवान का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे, तो क्या हमने भगवान को
असाधना
क्यों की, कि उनका आप उपदेश सुना, सुनना तभी कहेंगे जब हम उस रूप परिणमित होंगे। हम देखते बच्चे को, हमने कहा अपने माधवी को कहा जाओ बेटा पानी ले आओ अंदर से, और वो वही खड़ी रहे तो हम क्या कहेंगे, अरे तू सुनाई नहीं दिया तुझे, तो सुनाई दिया कब कहेंगे, वो जाके लेके आएगी तो हम कहेंगे इसने सुना हमारा, ये बेटी हमारी सब कुछ सुनती है, उसी को सुनना कहते ना। और हम सुनना किसको कहते हैं, बस सुन लेते हैं, उस रूप हम परिणमन नहीं करते हैं, तो हमने सुनना नहीं सुनना बराबर है। तो यहां भी जो हम सात तत्व संबंधी यथार्थता से हम विचार करेंगे तो ये क्या हम उसको हेय गेय उपादेय सही मान रहे हैं कि नहीं है। अरिहंतों को हमने उपादेय माना और उनका उपदेश सुनकर परिणमन का अपने में करना था, तो उनका इतना अच्छा उपदेश सुनकर हम क्या करने लगे, उनकी भक्ति में ही रह गए। तो उनकी भक्ति करने से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा कि नहीं होगा, ये पहले में पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो तो आश्रव तत्व है, भक्ति का भाव, बाह्य जो बोलने से जो भक्ति होती है, भगवान के सामने जो झुकना है, हाथ जोड़ना है, ये तो शरीर की क्रिया है, और भक्ति जो मुंह से बोलेंगे वो तो वाणी है, ये दोनों ही जड़ है, और वो करके हम मानते हमने भगवान की भक्ति की। सचमुच भक्ति तो वो शुभ राग है, यदि वो नहीं होगी और मात्र शरीर की क्रिया और वाणी की क्रिया करके हमने माना हमने भक्ति की, तो वो सच्ची भक्ति भी नहीं है। भक्ति तो सच्ची वही कहलाएगी जो भगवान का दिया हुआ उपदेश सुनते हैं और उस रूप आचरण करते हैं। देखो हम भगवान की भक्ति गा गा कर भक्ति करते हैं, आरती उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, ये कैसा हुआ मालूम है, नहीं मालूम? अच्छा, एक वृद्ध माँ बाप थे, बहुत उम्र लायक थे, 80-85 वर्ष के, तो उनके बच्चे थे, वो क्या करते थे, रोज सुबह उठते ही उनके बहुत विनय करते थे, नमस्कार करते थे, उनके गुणगान गाते थे, तो अच्छा करते थे कि बुरा करते थे, आप कहेंगे अच्छा करते थे, परंतु दिन भर क्या करते थे, उनका कहा हुआ कुछ नहीं मानते थे। उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए जरा पानी लाके रखो, भोजन जरा बराबर टाइम से दे दो, मुझे अमूक दे दो, कुछ नहीं, उनकी एक भी नहीं सुनते थे। सुबह उठते रोज पूजा तो जरूर करते थे, हम भी क्या करते हैं, पहले में पहले नमोकार मंत्र लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते सब कुछ करते हैं, परंतु भगवान का बताया हुआ एक भी नहीं सुनते, तो हम भी कैसे हुए। तो क्या हमने उनका सही विनय किया कि नहीं किया, ये तो हमने अविनय किया, क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं मानी। भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है कि मेरी आके सेवा चाकरी करो, ऐसे कोई भगवान नहीं कहेंगे कि तुम मेरी शरण में आओ, आ जाओ और मैं तेरा भला करूंगा, वो तो कहते हैं आप अपनी आत्मा की शरण जाओ और अपने आप को यथार्थ जानो, उनसे आपसे कुछ नहीं लेना देना है, उन्होंने तेरा अपना सारा मार्ग अपना आनंद अनंत सुख प्राप्त कर लिया है, और उनका जो उपदेश जो सहज रूप से खिरता है, क्योंकि पूर्व में जब वो चौथे से सातवें गुण स्थान तक थे तो ऐसी भावना उनके सहज रूप से ऐसे भाव आया था कि अरे ये मार्ग इतना अद्भुत है सब लोग समझ जा रहे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो किया था ना, वो सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता, मिथ्या दृष्टि चाहता है मैं ये बंध करूं, सम्यक दृष्टि नहीं चाहता है, वो कोई बंध को नहीं चाहता, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं तीर्थंकर बनू मैं चक्रवर्ती बनू, क्योंकि वो तो बंध का फल है, उसमें उसको सुख बुद्धि नहीं होती है सम्यक दृष्टि को, और अज्ञानी मानता है सोच रहा मैं मुझे कौन सा पद बांधना है, तीर्थंकर बनू के चक्रवर्ती बनू के कामदेव बनू, तो उसके तो वो ऐसे पुण्य प्रकृति बनती भी नहीं है। तो यहाँ ये बात हो रही, उनके जो उपदेश तो सहज रूप से खिलता है और उस उपदेश में ये बात हमें समझ, तब उन्होंने वो कर्म बांधा था, शुभ भाव आया था ना चौथे गुणस्थान या पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वर्ती को, तब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया, वो तो बनती रहती बाद में भी आठवें गुणस्थान तक, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी, परंतु उदय कब आएगा, तेरहवें गुणस्थान जब में जाएगा तब, उसके पहले ही समय से, तब तो कोई उनका विकल्प नहीं, कोई शुभ भाव है कि नहीं है,
नहीं है।
जब यानी समोचरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिरती है, तभी उनको समझाने का राग है कि नहीं है?
नहीं,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण वितरागी पहले हुए और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, तो क्या होता है उसके फलस्वरूप सर्वांग में से वो ओम ध्वनि छूटती है सहज रूप से, और उसमें सारा ही जिसको कहते हैं स्वरूप पूरी विश्व वस्तु व्यवस्था में ख्याल में आती है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं, कल हमने जहाँ वो दृष्टांत देखा था ना, पत्रांक 24 में सेकंड पेज, हमने देखा था कि ये जो दृष्टांत हमने वो घर का देखा था, और उसके बाद वो हे गे भी देखा था, चौथा पेज होगा क्योंकि हमने वहां तक पढ़ा था। हाँ, आपके गुजराती पेज नंबर बता देना। 156। देखो, हम अरिहंत सिद्धों के प्रति देखते हैं, मिला? हाँ, लास्ट पैराग्राफ कि मेरा भी वैभव मेरा भी स्वभाव उनके जैसा ही है यह जानने के लिए। क्या कहते हैं? अरिहंतों के और सिद्धों के हम गुणगान गाते हैं, उनकी आरती उतारते, उनका दर्शन करते हैं, अरिहंतों का क्यों करते हैं? अपना स्वभाव कैसा है जानने के लिए, क्योंकि अरिहंत जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे वो भी मनुष्य है, ये शरीर से मैं भिन्न हूं वो भी शरीर से भिन्न है, या उनके तरफ से अपने ओर आना, वे जैसे शरीर से भिन्न है वैसा मैं भी हूं। अभी उन्होंने पर्याय में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट किया है, कहां से प्रकट किया? उनके स्वभाव में से। मेरे भी पास ऐसा ही स्वभाव है, मैं भी ऐसे स्वभाव वाला हूं, अभी पर्याय में नहीं हुआ है, तो अपना स्वभाव कैसा है वो उनके तरफ देखने से पता चलता है जो उन्होंने प्रकट किया है। तो अरिहंतों का दर्शन उनकी पूजन क्यों करते हैं? देखो, अरिहंत भगवान की मूर्ति देखते हैं तो हमें वो अंतर्मुख मुद्रा है, अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, और मुख की ओर देखते तो कितनी शांति और वितरागता है, तो हमें वो तो डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं। उनकी प्रतिमा को देखकर हमें इन्हें अपना पुरुषार्थ अपना वीर्य उछलता है, कैसे मैं भी अंतर्मुख हो जाऊं, ये अंदर से ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते मेरा भी स्वभाव उनके है जैसा ऐसा जानने के लिए, स्वभाव में लीन होकर अनंत सुखी बन सकते हैं, इसका साक्षात उदाहरण अरिहंत सिद्धों के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कर दिखाया है, हम भी सुखी होना चाहते हैं और प्रयत्न क्या कर रहे हैं, पर द्रव्यों की तरफ से कुछ न कुछ सुख मिलेगा ये मान्यता है हमारी, तो ये तो अनंत सुखी है और पूर्ण अंतर्मग्न है, तो अंतरंग में से उन्होंने ये सुख की प्राप्ति की, क्योंकि उनके आजू बाजू देखा तो कुछ नहीं है उनके पास, सब कुछ छोड़कर वो अरिहंत हुए हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था त्याग की, फिर मुनि दशा अंगीकार की, फिर अपने शुद्धोपयोग में लीन हुए तब अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, तो उनके तो कोई अंतरंग बहिरंग परिग्रह है नहीं, फिर भी अनंत सुखी है, और हम सुखी बनने के लिए परिग्रह को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये उन हमारे लिए साक्षात उदाहरण के रूप में विद्यमान है। उन्होंने यह सुख किस रीति से यानी किस विधि से प्राप्त किया है यह जानने के लिए अरहंत की वाणी यानी जिन वाणी हम सुनते हैं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप क्यों जानना, तो उनकी वाणी से हम ये स्वरूप जानते हैं। मुनि तो साक्षात उस मार्ग पर आरूढ़ है, आरूढ़ है ने चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर, क्योंकि हमने देखा तीन कषाय का अभाव है और उतनी उनके वीतरागता है, इसलिए देव शास्त्र और गुरु वंदनीय है। देव तो उन्होंने साक्षात वो पद प्राप्त किया है, उनकी वाणी को शास्त्र कहते हैं, और उसके मार्ग पर आचरण करने वाले ऐसे मुनि हैं, उनको तो कहना चलते फिरते सिद्ध समान है उन्हें। परंतु इस जीव ने भूल क्या की है, उनको उपादेय माना। हाँ, इस जीव ने देव शास्त्र गुरु को ही उपादेय माना, उपादेय ने आश्रय करने योग्य माना, सही देखा जाए तो ये सब अजीव तत्व है, गेय तत्व है, परंतु उन्हें आश्रय करने योग्य उपादेय तत्व माना। तो क्या शास्त्र का आश्रय नहीं लेना, साधना नहीं करना? अरे उसी में रुक मत जाना, ये कहते हैं। शास्त्र में तो मार्ग बताया है, जैसे हम रास्ते पर चलते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट कोई आता है तो वहां पार्टियां लिखी होती है, ये स्ट्रीट, ये दूसरा स्ट्रीट है, तो हमें जो जाना है वो स्ट्रीट वहां बता दिया तो हमें बहुत आनंद हुआ, तो हमने क्या किया, हम नीचे उतर गए कार से और वो पाटिया को ही हार पहना दिया और वहीं पर आरती करते बैठे गए। हाँ, तो हम कहाँ कब पहुंचेंगे जहां हमको जाना है? उस स्ट्रीट पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने घर तक या जहां जाना है वहां पहुंच सकते हैं। हमारा ऐसा ही हुआ कि शास्त्र ने तो मार्ग बताया तो हम, या तो पहले तो हम बचपन में तो शास्त्रों की भी आरती करते थे, जैसे देव की आरती होता है होती थी, फिर शास्त्र की होती थी जिनवाने की, और फिर ऐसे चलता था सब धमाधम, परंतु शास्त्र खोलकर कभी पढ़े नहीं थे। पढ़े तो भी ऐसे ऊपर ऊपर बात बात पढ़ी थी, ऐसे गहरा तत्व ज्ञान जैसे शुरू से उसके जैसे मेथोडिकल अभ्यास होता ऐसा कभी नहीं किया। भंडार के भंडार कपाटों में मंदिरों में पड़े थे और उसके कपाट के सामने हम आरती रोज ऐसे घुमा के, आरती घुमा के गाते भी थे बहुत जोर जोर से, परंतु उसके अंदर क्या माल है वो कुछ पता नहीं था। अभी हमें पता चला पढ़ने लगे तो हम किस में अटक गए? उसी में। उसमें जैसा बताया कि तू अपने आत्मा के सन्मुख हो जा, अपने आत्मा का अनुभव कर, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो हमने अंदर स्वयं ज्ञान स्वरूप है जानने की कोशिश नहीं की, इसी में अटक गए। पढ़ा और पढ़ाया, फौज तैयार होगी ना, पढ़ने वालों की भी और पढ़ाने वालों की, यानी हमने इतनी तो तरक्की कर दी कि मार्ग समझ गया तो इतना अच्छा है कि सबको पढ़ाना भी प्रारंभ किया और लोग भी कहने लगे ना बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। हमें क्या मिला? यदि उसको समझकर अंतर्मुख होकर अपना अनुभव करेंगे तो ही इसमें अपना कल्याण। तो यही बात है कि उसको उसने उपादेय माना, उन्हें जानकर यानी जो शास्त्र में बात बताई थी या देव को, गुरु को और शास्त्र को जानकर, उपदेश सुनकर, आश्रय तो स्व तत्व का यानी जीव तत्व का, अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का लेना था, परंतु वैसा नहीं करते हुए मात्र यानी ओनली देव पूजा, शास्त्र श्रवण, गुरु की उपासना में ही यह जीव संतुष्ट होकर वहीं रुक गया, यहां तक आके अटक गया। जैसे कहते हैं ना, बीच मझधार में, बीच समुद्र में कोई डूबे तो समझ तो सकते हैं, परंतु ये किनारे तक आया है और वही गोते खा रहा है, तो उसको किनारा दूर नहीं है अभी, फिर भी वहीं पर अटक गया। और यहीं तक अगर आके अटक जाता है तो वापस फिर समुद्र में चला जाएगा। तो कहते हैं कि यहीं पर रुक गया, ये शुभ भाव और उनसे होने वाला बंध, ये तो आश्रव बंध तत्व है, इसमें अटका ना, देव पूजा, शास्त्र श्रवण और गुरु की उपासना। तात्पर्य यह हुआ कि केवल अजीव तत्व ने देव गुरु शास्त्र को ही उपादेय मानकर यह जीव नहीं रुका, परंतु आश्रव बंध तत्व ने देव गुरु शास्त्र की भक्ति को भी उसने उपादेय माना। देखो तत्वों में है ये गई उपादेय लगाना सीखना चाहिए। देव, शास्त्र, गुरु तीनों ही पर है, पर द्रव्य है, ये उसने उनको उपादेय माना। अब कहते उनके प्रति भक्ति भाव करने लगा तो ये क्या है, शुभ राग है, उससे आश्रय और बंद हो रहा है और वो करने से मेरा कल्याण होगा मानकर उसको उपादेय माना, यानी अजीव तत्व को भी उपादेय माना और आश्रय बंद तत्व को भी उपादेय माना। ख्याल में आते ना, जैसे पुण्य करना चाहिए चाहिए भी ये सब यानी वो मान्यता में उपादेय कर रहा है उसको। देव शास्त्र की भक्ति पूजा छोड़ने ये बात नहीं है, उसके मानने में उसने उसको क्या माना है, ये बात यहाँ अभिप्राय की गलती कहाँ हो रही है उसको जानना है। यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर हम तो चलो अच्छा है, हम अभी देव पूजा छोड़ देंगे, अच्छा बताया हमने, अभी तक स्वाध्याय में हमारा कुछ 15 मिनट वेस्ट होते थे, अभी वो भी बच जाएंगे। ऐसा है ना, कोई ऐसा नियम लेते थे व्रत, रोज स्वाध्याय करूंगा, कितने जो कुछ 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या करेंगे हम, वहां कुकर चढ़ा देंगे और बैठ जाएंगे, वैसे तो सिट्टी होती ही है तो तब तो, 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 तो हो जाएगा। मैं तो मेरी अपनी बात बता रही हूँ। देखो देखो, सम्यक दृष्टि जीव को भी देव गुरु शास्त्र का बहुमान, वंदन पूजा का भाव आता है, उसे शुभ अशुभ भाव यानी आश्रय और उससे होने वाला बंध भी होता है। अशुभ भाव भी आएंगे ना, खाना पकाएगा, व्यापार धंधा करेगा, खाना खाएगा भी, बच्चों की देखभाल कुछ जो कोई उसके प्रति जो उसके कर्तव्य वो भी चलेगी, उसके आश्रय बंध भी है उसको, परंतु मान्यता में, ये मान्यता की बात चल रही, मान्यता में वह आश्रय बंध को हेय ही मानता है, त्यागने योग्य मानता है। जैसे हमने देखा बेटी जन्मती उसी समय उसने मान लिया कि ये तो पराया धन है, उपादेय नहीं मानता। आते हैं शुभ अशुभ भाव, पर्याय में है परंतु उसको लगनी ऐसे कह रही है ये कब छूट कर मैं पूरा अंतरंग में लीन हो जाऊं। देव गुरु शास्त्र को वह गेय तत्व मानता है, मानता की बात चल रही, बारम्बार स्वसन्मुख यानी जीव तत्व के सन्मुख उपयोग केंद्रित करके, यानी बारम्बार अपने आत्मा पर लक्ष्य केंद्रित करके, क्योंकि बारम्बार उसी की लगनी लगी है तो वहीं पर उसके विचार भी वही चलेंगे और विचार करते करते अपने आप में ही डूब जाएगा वो। वह आत्मलीनता साधने में प्रयत्नशील रहता है, ऐसा नहीं कि उसको एक जगह बैठना है ऐसे ऐसा बैठ के ऐसे हाथ पैर हाथ जो कुछ कर रहा है उसमें वो उपयोग की मग्नता होती है और अपने उपयोग अपने आप को पकड़ लेता है। ऐसी यथार्थ मान्यता होगी तो ही उसकी देव गुरु शास्त्रों की श्रद्धा सच्ची है, ऐसा कह सकते हैं। पहले हमने चार बातें देखी थी, देव शास्त्र गुरु की सही ये यथार्थ प्रतीति कहा था, यानी प्रतीति का अर्थ होता है श्रद्धा। तुम कहते हाँ हम देव शास्त्र गुरु को ही पूछते अन्य को नहीं पूछते, ये हमारी प्रतीति हुई, उसको प्रतीति नहीं कहा। कैसी प्रतीति, वे गेय तत्व है जानने मात्र है, ना वो हेय है ना उपादेय है, उसको हमने सही प्रतीति सही श्रद्धा कहेंगे। और उनके प्रति जो भक्ति है शुभ राग आ रहा है वो कैसा है, आश्रय बंध तत्व है और वो हेय है छोड़ने लायक है, शुभ भाव करते हुए आते हुए उसको हेय ऐसी प्रतीति है उसकी। श्रद्धा में कैसा मान ले, मान्यता कैसी है, ये छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य, तब हम कहेंगे कि उसके देव शास्त्र गुरु की सच्ची प्रतीति यथार्थ प्रतीति है। हम यथार्थ प्रतीति नहीं, नहीं हम उन्हीं को पूजा करते अन्य किसी के नहीं करते, उसको यथार्थ प्रतीति मानते, वो मान्यता नहीं है, उसकी बात यहां नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम केवल सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही नमस्कार करते हैं, सात तत्वों के नाम और लक्षण हमें मालूम है, अर्थात हमें सात तत्वों की श्रद्धा है, इसको श्रद्धा नहीं कहते, ये तो ज्ञान हुआ। क्या कहते हैं, सात तत्वों के नाम सीखे और लक्षण हमने याद कर लिए, ये तो ज्ञान हुआ उसका। कैसा ज्ञान, आगम के द्वारा हुआ ज्ञान, पर उसकी सही श्रद्धा तब कहलाएगी जब उसमें हेय गेय उपादेय को सही स्वीकार करेगा। परंतु उनकी श्रद्धा में हेय गेय उपादेय तत्वों का जैसा योग्य श्रद्धान होना जरूरी था वैसा न होने से जो का त्यों श्रद्धा, ये छड़ाला में ये जो का त्यों शब्द है ना, इसलिए उसी को इन्वर्टेड में डाला है, जो का त्यों श्रद्धान न होने से उनकी यह श्रद्धा विपरीत ही है, ही लगाया ऐसा शास्त्र में कहा है, ये सही श्रद्धा नहीं है। आप कहें क्या कहते हैं, हमने आज तक किसी अन्य मतियों को नमस्कार भी नहीं किया, पर क्या हमने उसको श्रद्धान में यथार्थ माना कि नहीं माना, ये हेय गेय उपादेय जैसा है, हमने तो उनको उपादेय माना था, ये हमारे तारणहार है, ये हमारे सब कुछ कर देंगे, या इनकी शरण में जाना चाहिए, बस यही एकमात्र कर्तव्य, ऐसा माना था। तो वो गेय तत्व है ऐसा स्वीकार नहीं किया था। आजकल तो देह को ही मैं मानकर, देह को ही यह मैं हूं ऐसा माना है, लोग उसे ही परम उपादेय मान रहे हैं। सादा उपादेय नहीं, अटमोस्ट उपादेय। किसको? देह को। स्वयं का अस्तित्व ही भूल गया है, मैं स्वयं जीव हूं और ये शरीर भिन्न है, ऐसे उसको तो पता ही नहीं, भूल ही गया है। अपना अस्तित्व खो बैठा है ने, वो अस्तित्व चला नहीं गया, क्योंकि नष्ट कभी होगा नहीं उसका अस्तित्व। फिर भी इसने उसको स्वीकार नहीं किया है, वो भूल ही गया है। जैसे इतना ही काफी नहीं था कि देह से भिन्न तू आत्मा है ऐसा बताने वाले को ही मूर्ख कहता है। यानी ये तो देह को मैं स्वरूप मानता है, अपने स्वरूप मानता है, अपने को भूल गया है। अब कहते अपने को भूल गया तो ठीक है, किसी ने बताया अरे तू तो जीव हो, तुम जीव हो और शरीर से भिन्न हो, तो फिर उनको ही मूर्ख ठहराता है। ये आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, या आप रात दिन आत्मा फात्मा की बातें, किसकी आत्मा फात्मा की बातें करते हो तो इनको ही वो पागल समझता है। अपने किसी प्रिय व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट होने से वह अपना नाम गांव बुद्धि सब भूल जाता है, विस्मरण होता है, तो हम भी दुखी होते, आंखों में आंसू आते। क्या कहा, ऐसे होता है ना, कोई हमें पहचाने वाले हो या कोई रिलेटिव हो, तो ऐसे कोई स्मृति भ्रंश हो जाता है कि उनको मैं कौन हूं कुछ नहीं पता है। हम देखते घर से बाहर निकल कर वो कहीं ऐसे पागल की तरफ घूमते भी रहते हैं। ऐसे केसेस भी हमने देखे है, कोई सुने भी है, कोई बहुत बड़ी घर की बहू हो, कोई सेठानी हो, और फिर निकल पड़ती है रास्ते पर और उसको कोई सुध-बुध नहीं है, मैं कौन हूं कहां क्यों कुछ है, ऐसे भी होता है। परंतु हम भी अनादि काल से, हमारी क्या पोजीशन हो रही है अभी हम देखेंगे। कोई अपना नाम गांव भूल जाता है तो हमें बहुत दया आती है उसकी। तो हम क्या हो रहे हैं, हम भी कब से, अनादि काल से मति भ्रष्ट होकर, मति यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने आप भूल गए हैं, अपने आप को भूल कर प्रत्येक गति में जो जो शरीर प्राप्त हुआ उसे ही यह मैं मानकर पागल की भांति घूम रहे। नहीं, जन्म मरण चल रहा है, ये देह छोड़ा दूसरा धारण किया उसको अपना माना, मैं माना, मैं पने की बुद्धि किसमें। जब कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, चिड़िया हो गया, मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ, ये बदलते रहे पर्याय उसके, अपने को उस पर्याय रूप मानता रहा। मैं जीव हूं ऐसा उसने कभी भी नहीं माना, और कोई बताने जाता है तो उस पर विश्वास नहीं किया, फिर भी उसको उस बात का पता नहीं है। वो है दुखी और उसका उस बात का पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं, यानी समाज में कैसे कैसे लोगों की भ्रांति हो रही है, इसलिए कुछ लोग कहते का, कुछ लोग कहते का अर्थ है अज्ञानी कहते हैं, अहो मैं जीव हूं यह तो सच है, परंतु जीव को रहने के लिए शरीर तो आवश्यक ही है ना, शरीर के बिना कहां रहेगा जीव, शरीर के बिना जीव अंतराल में ही लटकते रहेगा क्या। देखो ये हमारे घर में हमने सुनी हुई बातें बचपन में, ऐसे कोई हमारे नानी हो या कोई अन्य कोई, अरे शरीर तो चाहिए ना, ऐसा क्या। उन लोगों ने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को ही नहीं जाना, यानी जीव द्रव्य का अस्तित्व तो उसके अपने से टिका हुआ है, शरीर के कारण, भोजन के कारण, पैसे के कारण नहीं टिका है। अपनी मान्यता में क्या क्या है अपने जो जा देखेंगे हम। जीव तत्व का और अजीव तत्व का स्वरूप वे जानते नहीं है। इतना ही नहीं, अनेक वर्षों से सिद्धों को नमस्कार करके भी सिद्ध भगवान जीव है और वो कितने शरीर वाले, अशरीरी है। वैसे मैं भी जीव हूं और शरीर पुद्गल है, मेरे से अत्यंत भिन्न है, इस बात को वो नहीं जानते। अपने को धार्मिक कहलाते हैं और ऊपर मानते हैं अरे शरीर के बिना जीव कैसे रहेगा। तो ये तो न्याय है ना कि सिद्ध भगवान भी जीव है और अनंत है और वो हरेक है, उनका अस्तित्व चल रहा है, तो शरीर के बिना ही चल रहा है, भोजन के बिना ही चल रहा है। और क्या क्या इसकी मान्यता है, देखो ये मान्यता की भूल चल रही है, उसकी बातें हम देख रहे हैं। उपवास करने से मुझे कैसे हल्का हल्का भासित होता है, उपवास का फल क्या मैं अच्छा रहता है, थोड़ा शरीर मेंटेन होता है, किस लिए कर रहे हो, शरीर मेंटेन, हल्का अच्छा लगता है, यानी वो तो लंघन कर रहा है, लंघन की किसने ना पाड़ी है, उसको उपवास मानकर मोक्ष मार्ग में तप मानकर कर रहा है, कहता भी उससे निर्जरा होगी, अंतरंग में अभिप्राय है ये दोस्त थोड़ा रिड्यूस होने का, मैं शरीर हूं और मुझे हल्का अच्छा लगता है। उपवास से क्या मैडम, मुझे अच्छा लगता है, क्यों, थोड़ा वजन कम हुआ, यानी मैं शरीर रूप हूं और मेरा वजन कम हुआ ऐसा मानता है, मान्यता पड़ी वहां भी। नमोकार मंत्र पढ़ने से फेफड़ों में फलाना लाभ होता है, ये ऐसे हमने पुस्तक भी पढ़े हो, नमोकार मंत्र के फायदे, वहां तो लिखा अण होता ना, प्राकृत में अण आता है सब जगह, अपना नमोकार मंत्र है वो मूल प्राकृत षटखंडागम का वो मंगलाचरण है, सबसे पहले में पहले लिखित रूप से पहले बोलते थे लोग, वो तो अनादि है, अनादि का ये मंत्र है वो प्राकृत भाषा में, और उसके बिगिनिंग ण से होती है, नमो अरिहंताणम, बाद में संस्कृत जब आया था नमः अरिहंतेभ्यो ऐसा आ गया, परंतु मूल क्या है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो कहते ये ण कहने से क्या लाभ होता है, हाँ ये तो ऐसा कहने से उसको लंग्स में क्या लाभ होता है, उसके किडनी में क्या लाभ होता है, ऐसे हमने पुस्तक पढ़ी। हाँ तो कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से फेफड़ों में फलाना लाभ होता है, राम कहने से फलाना लाभ, जैसे ना ओम राम ह्रीम ह्रूम ऐसे मंत्र हैं अपने, तो वो तो सिद्धों को अरिहंतों को याद करने के, वो बीजाक्षर कहलाते हैं, परंतु वो पढ़कर अरिहंतों के वितरागता की याद नहीं आती है, किस लिए पढ़ रहा है, शरीर में लाभ होने के लिए, क्यों, मैं शरीर हूं और मुझको लाभ होता है, तो राम कहने से फलाना लाभ, रहीम कहने से विशिष्ट लाभ, इस तरह शरीर के अवयवों में लाभ ढूंढना और उसमें महात्म्य भाषित होना, नमोकार मंत्र का महात्म्य किसमें है, अरे वो शरीर को लाभदायक है, अभिप्राय की गलती ख्याल में आई ना, यह सब अभिप्राय का यानी मान्यता का विपरीतपना यानी भूल भरे मान्यता है, उस जीव को अभी भी शरीर में ही एकत्व है, ममत्व है, इस शरीर से हम देव पूजा और व्रतों का काम करवा लेते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा भी कहने वाले हैं, शरीर है ना तो उससे काम करवा लो, जैसे नौकर से काम करवाते हो ना, अब इससे ऐसा ये सब काम में लगा लो, देव की पूजा करवाओ, उपवास करो, ये शरीर के द्वारा हम धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, उसको सब धर्म के काम में लगाओ, जैसे वो आपका सर्वेंट है, परंतु शरीर में से भिन्न है मेरे से और उसकी प्रत्येक क्रिया उसके अपने से होती है, ये उसने नहीं माना, यानी कोई कहता है शरीर ही मैं हूं और कोई कहता है शरीर है ना अपना, उससे सब ये कार्य करवा लो, यानी मान्यता क्या रही, मैं शरीर का कार्य कर सकता हूं या करवा सकता हूं,
अपने पे हावी मत होने देना।
तो शरीर से हम देव पूजा व्रतों का काम करवा लेते हैं ऐसा मानना भी महान भूल है, क्योंकि शरीर का यानी परद्रव्य का कर्ता बनकर इसने मैं उसका कर्ता हूं मान लिया, देखो मैं कैसा अच्छा बोलता हूं, ये बोलने के प्रति उसने अपना कर्तृत्व माना, ये तो भाषा है, शब्द जो है भाषा वर्गना उस रूप परिणमित हो रहे, हाँ जीव का उसमें वो कोई निमित्त बनता है वो बात अलग, परंतु इसने उसको अपना को कर्ता मान लिया है, कर्तृत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व का ही पोषण वह करता है, हमने देखा मिथ्यात्व अनेक प्रकार का है, एक होता है अहम बुद्धि यानी शरीर मैं हूं ऐसी बुद्धि यानी मान्यता कोटि मान्यता, दूसरी है ममत्व बुद्धि यानी यह मेरा है, शरीर है मेरा, यह घर मेरा है, बच्चे मेरे, ये सारा मेरा है मेरा है मेरा, ये ममत्व बुद्धि, एक होती है कर्तृत्व बुद्धि, मैं इनका करता हूं, ये शरीर का परिणमन मैं करता हूँ, देखो मैंने कैसा मेंटेन रखा है, देखो मैं इतना सारा काम करते हैं, ये सब क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। और एक होती है भोक्तृत्व बुद्धि, ये सारे मिथ्यात्व है, तो वो उसी का पोषण करता है। भूत प्रेत की बातें करने जाएंगे तो एक कहानी से दूसरी कहानी याद आती है। कल कहानियां बहुत चली ना उसी तरह मूर्खता की इन बातों को भी कोई अंत नहीं है। मूर्खता यानी मिथ्यात्व की बातें निकलती है तो कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, उसमें कोई अंतर, और नए नए फैशन भी चलते हैं। ये भ्रांत कल्पनाएं औरों की है ऐसा समझकर अन्य लोगों की तरफ देखने की आदत छोड़कर ये मूर्खता की बातें क्या मुझ में है ऐसा विचार करना। हम क्या कहते हैं, ऐसी मूर्खता, हंसकर नहीं नहीं वो फलाना ऐसा मानने तो वो दूसरा ऐसा मानता है। मैंने अगर आज तक ऐसी मूर्खता नहीं की होती तो कब का समय दर्शन प्राप्त करके मैं सिद्धालय में विराजमान हो गया होता, यानी अभी यहाँ रखड़ रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है, मैंने ये सारे भूले करते आया हूँ मैं अभी तक, अपना स्वाधीन सुख भोगता। तो कहते चिंता की कोई बात नहीं, क्यों? अभी तो पता चला ना कि ये मूर्खता थी जो मैं मान रहा था, कि अपने ही मूर्खता का पता चलना यह भी सयानेपन की ओर मुड़ने वाला पहला कदम है। क्या कहा, अभी तक जो मैं मान रहा था वो मूर्खता थी, जब ऐसे पता चला तो रखेगा क्या मूर्खता? देखो मूर्ख को तो लगता है मैं सयाना हूं, जब वो पता चलता है ये मूर्खता थी तो उसका अर्थ है ये सयाना अभी होने चला है, अभी यह हुआ है, यानी अभी तो हमने ये अजीव तत्व संबंधी चर्चा देखी है और अभी इसी यथार्थ श्रद्धान को हम 25 नंबर के पत्र के द्वारा देखेंगे आगे। देखो शुरू से देखते हैं, सात तत्वों का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम मैं स्वयं जीव तत्व हूँ यह बात ध्यान में रखकर ही सभी तत्वों का स्वरूप समझना चाहिए। अपने का पहला ठिकाना है ना, मैं स्वयं जीव तत्व हूँ। फिर हमने देखा था अभी अजीव तत्वों को हमने ज्ञेय किस तरह से वो देखा था। रामायण सुनने के बाद अगर कोई पूछे ओ आप जरा बताए तो सही कि सीता राम की कौन थी, ये मराठी में ऐसे कहावत है, रामायण हुआ पूरा सुन लिया बहुत दिनों तक, कौन थी सीता राम की कौन थी, ऐसा जैसे पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे? ऐसा करिए, अरे मेरा नसीब मेरा, समझाने वाला कहेगा ना तो मैंने क्या सुना है अभी तक, वही तो उसकी तो स्टोरी चली थी। तद्वत जीव अजीव तत्व का स्वरूप, उनके लक्षण, उनके संबंध में होने वाली विपरीत मान्यता और यथार्थ श्रद्धान, इतनी सारी बातों का अभ्यास करने के बाद भी, यानी अभी तो हमने जो जितना जितना पढ़ा है इसके बाद भी अगर कोई पूछे, हम इतना सारा अब पढ़ चुके हैं परंतु आप हमें यह तो बताइए कि समाज में रहते हुए हमें किस तरह आचरण रखना, बाल बच्चों का पोषण करे या न करे, दूसरों की मदद करे या न करे, तो अपने को क्या मानकर ये पूछ रहा है? मैं मनुष्य हूं और मैं अन्य का कुछ कर सकता हूं, कर सो सकता हूं, अब करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आया? यदि मैं कर ही नहीं सकता हूं तो ये किसी को प्रश्न नहीं आएगा मैं करूं क्या नहीं करूं। ऐसे सवाल उठने का एकमात्र यही कारण है उसने अपने आप को जीव तत्व न मानकर मनुष्य पर्याय ही मैं हूं ऐसा माना है। आत्मा प्लस शरीर मिलकर मैं हूं, ऐसा जीव और अजीव तत्व को एक मानने के कारण उस व्यक्ति को ऐसे प्रश्न उठते हैं। हम कौन है? स्वयं जीव, हम जीव है तो शरीर का क्या करना, क्या करना है? वो शरीर है, उसको जानने का किसने निषेध किया है, परंतु उसको मैं हूं मान रहा है जी, ये शरीर और मैं मिलकर मैं हूं, और फिर इस मैं को क्या करना चाहिए ऐसा सोचता है। पर्यायगत योग्यता के अनुसार वैसे भाव आते, पर्यायगत योग्यता ने अभी हम मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय तो उस गति के भाव भी होंगे, मनुष्य गति जैसा व्यवहार आचरण भी होगा, वैसे भाव भी उठेंगे। परंतु उसी समय उन भावों का, उन विचारों को तो जो जान रहा है वह मैं हूं। देखो अपने में भाव उठ रहे ना, मैं बच्चों का कुछ करूं, अच्छा करूं, उनके लिए ये करूं वो करूं, ऐसे जो भाव उठते हैं तो उसको जानने वाला मैं हूं, अपने में ही उठने वाले भावों को मैं जान रहा हूं। तो ये ज्ञान जो है वही मैं हूं। और इसने क्या माना, ये आश्रव बंध भाव उठ रहे, ये वो क्या है, आश्रव बंध है ना, शुभाशुभ भाव उठ रहे, तो मैं मात्र ज्ञान ही कर सकता हूं, अन्य कुछ भी नहीं। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान होने पर ही उसने जीव और अजीव तत्वों को सही जाना, सही पहचाना, सही माना, ऐसा हम कहेंगे। ख्याल में आता है क्या है, मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय जैसे इसके भाव भी उठ रहे हैं, अपने में क्या भाव उठते हैं ये किसने जाना,
आत्मा
ने, वही तो मैं हूं जानने वाला। इसने जानने वाला मैं हूं ऐसा नहीं मानकर मैं कुछ करने वाला हूं ऐसा माना, ये उसकी भूल हुई। तो फिर करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करने का सवाल नहीं है, करने के भाव भी उठ रहे हैं और वैसी क्रिया भी हो रही, वो जड़ की भी क्रिया हो रही है, वैसे वैसे भाव भी उठ रहे, उसको जानो ना। यहां जो ज्ञान हो रहा है वो मैं हूं, इस तरह इसमें भेद ज्ञान करना है। देखो इस विश्व में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य, इतने सारे द्रव्य है। मैं एक भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हूं, क्यों, मेरे में अस्तित्व गुण है ना, मैं भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हूं, मैं स्वयं आप रूप से हूं, आप यानी स्व, मैं स्वयं अपने रूप से हूं, परद्रव्य रूप से नहीं हूं। परद्रव्य में सारे अनंत अनंत आ गए, जीव अजीव सब, परद्रव्यों की मेरे में और मेरी परद्रव्यों में नास्ती है, अत्यंता भाव है, ऐसा समझते ही उसी क्षण हमारी दृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है मान्यता में, अभी तक परद्रव्यों में उसमें मैंपने की बुद्धि थी, अब वो दृष्टि हटकर सभी परद्रव्यों से हटकर स्वद्रव्य की तरफ मुड़ती है। द्रव्य तो उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है, हमने ये पहले देखा था, द्रव्य किसको कहना, सत द्रव्य लक्षण, और वो सत कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, हर समय नए पर्याय का उत्पाद, उसी समय पुराने पर्याय का व्यय और उसी समय ध्रुवता कायम। ये जो कायम रहने वाला जो अंश है, कायम है ऐसा जो द्रव्यांश जिसको हम कहते हैं, वो त्रिकाली, त्रिकाली क्योंकि तीनों काल वो है एक रूप है, क्योंकि बदलने वाली तो पर्याय है, और जो ध्रुव अंश तो वैसा का वैसा एक रूप रहता है, वो जो ध्रुव अंश है और पर्याय अंश है प्रत्येक समय में बदलने वाला, जैसे समुद्र समुद्र पने से एक समुद्र ही है और उसकी जो लहरें है वो बदलने वाला अंश है, उसी का अंश है वो, पर बदलने वाला अंश है। ऐसे दो विभाग ज्ञान में आने पर, ज्ञान तो दोनों को जानेगा, ध्रुव अंश कभी नहीं बदलने वाला, सदा एक सा यानी एक जैसा, वैसा का वैसा वही रहने वाला, ऐसा जो स्वभाव न पलटने वाला, जैसे ज्ञान 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 तो सदैव है, वो मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है उसकी नहीं चर्चा, वो पर्याय पर नहीं देखना है। मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप, अकेले ज्ञान नहीं ना, अनंत गुणों का समूह रूप, ऐसा मैं अखंड वही का वही का वही का वही का वही हूं, ये जो सदा एक रूप ध्रुव अंश जो मैं हूं पूरा, तो जो अपरिणामी भाव है वही मैं हूं, यह बात समझ में आती है। इसी को जीव तत्व कहा है, इसी को परम पारिणामिक भाव कहा है, इसी को कारण शुद्ध पर्याय कहा है।
वही हम यहाँ अपरिणामी बोलते हैं, फिर भी वो परम पारिणामिक भाव है,
परम पारिणामिक, हाँ पारिणामिक कहा क्योंकि वो तो वही वो तो ध्रुव अंश है, वो क्या पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है, द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था होते हुए भी उसको गौण करके हम कायम रहने वाला द्रव्य ऐसी बात कर रहे हैं। समुद्र समुद्रपने से कायम है, पूरा जो अंदर से नीचे से ऊपर तक का एक सतह थे उसकी, फिर ऊपर थोड़ी लहरें है जो उसको, परंतु वो भी समुद्र का ही अंश है, तो समुद्र है वो, मिलकर ही समुद्र कहलाएगा। फिर भी जो एक ध्रुव अंश जो उसको हम कहेंगे, उसकी सतह, तो उसको हम कहेंगे यहाँ नाम अलग अलग है, परम पारिणामिक भाव कहेंगे, कारण शुद्ध पर्याय वाला कहेंगे, ये जो उसके अलग अलग नाम, बताना तो वही है कि ये जो ध्रुव अंश है, हो गया समय, वह मैं हूं, उसका आश्रय लेना है, उसको जानते रहना है। पहले उसको जानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और उसी में लीन रहेंगे, लीन रहना है उसी में, उसको जानते रहना, उसमें जम जाना, रम जाना, इसको कहते आचरण करना, चारित्र। तो ये मैं हूं ऐसा जानना और मानना, यही है जीव तत्व का आश्रय लेना, तब हम कहेंगे उसको उपादेय का। यही रुकते, अभी अपना समय हो गया। लो 2400 भगवान की जय।